भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से शिक्षाएं, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण। सबसे पहला कारण हमने लिया देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु, और हमारे पिछले सेटिंग में हमने दूसरा कारण गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु, और इसके संदर्भ में हम ये श्लोक फिर लेंगे, गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान, दशम स्कंद 21वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलये हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलये हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलये अयम यह अद्रिहि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ, यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण
तथा बलराम के चरण
कमलों
के
स्पर्श
स्पर्श
से
प्रमोद
हर्षित
मानम
आदर
तनोति
प्रदान
करता है
सह
साथ
गो
गणयो
गौवें
बछड़े
तथा ग्वाल
बाल के
तयो
उन
दोनों
श्री
कृष्ण तथा
बलराम
यत
क्योंकि
पानीय
पेय
जल के साथ
सूयवस
अत्यंत
मुलायम
घास
कंदर
गुफाएं
कंदमूले
तथा
खाद्य
कंदों से
अनुवाद
और
तात्पर्य
श्रील
प्रभुपाद
के शिष्यों
द्वारा
यह
गोवर्धन पर्वत
समस्त
भक्तों में
सर्वश्रेष्ठ
है।
सखियों
यह
पर्वत
कृष्ण
तथा बलराम
के साथ
ही साथ
उनकी
गौओं
बछड़ों
तथा ग्वाल
बालों की
सभी प्रकार
की
आवश्यकताओं
पीने
का पानी
अति
मुलायम घास
गुफाएं
फल फूल
तथा
तरकारियों
की पूर्ति
करता है।
इस तरह
यह पर्वत
भगवान
का
आदर
करता है।
कृष्ण
तथा बलराम
के चरण
कमलों का
स्पर्श
पाकर
गोवर्धन
पर्वत
अत्यंत
हर्षित
प्रतीत
होता है।
तात्पर्य
उपर्युक्त
उद्धरण
श्रील
प्रभुपाद
कृत
चैतन्य
चरितामृत
मध्य
लीला से
लिया गया है।
श्रील
विश्वनाथ
चक्रवर्ती
ठाकुर ने
गोवर्धन
पर्वत के
ऐश्वर्य
की
विवेचना
इस प्रकार
की है।
पानीय
शब्द
गोवर्धन
पर्वत
के झरनों
से प्राप्त
सुगंधित
शीतल
जल
का
द्योतक
है,
जिसे
कृष्ण
तथा बलराम
पिया
करते
थे
और
जिससे
अपने
पांव
और मुख
भी
धोया करते
थे।
गोवर्धन
पर्वत
शहद
आम
का रस
तथा
पीलू
का रस
जैसे
अन्य पेय
भी
प्रदान
करता है।
सूयवस
दूर्वा
अर्थात
दूब
या
घास
को
बतलाता
है,
जिससे
अर्घ्य
की
धार्मिक
भेंट दी
जाती है।
गोवर्धन
पर्वत
में घास
भी होती
है
जो
सुगंधित
मुलायम
तथा
गौओं
की वृद्धि
एवं
उनमें
दूध
बढ़ाने
के लिए
लाभप्रद
है।
इस तरह
यह घास
आध्यात्मिक
पशुओं
को खिलाने
के
काम आती है।
कंदर
गुफाओं
का
सूचक
है,
जहां
कृष्ण
बलराम
तथा
उनके
संगी
खेलते
बैठते
और
लेटते
थे।
ये
गुफाएं
तब
आनंद
देती
हैं
जब
या तो
बहुत
गर्मी
हो
या
सर्दी
हो
या फिर
वर्षा
हो रही
हो।
गोवर्धन
पर्वत
में
खाने
के मुलायम
कंद,
शरीर
सजाने
के रत्न,
बैठने
के लिए
समतल
स्थान
तथा
चिकने
पत्थर,
चमकीले
जल
और
अन्य
प्राकृतिक
वस्तुओं
के रूप
में
दर्पण
तथा
दीपक
प्रदान
करता है।
ओम
ज्ञान
तिमिरांधस्य
ज्ञानांजन
शलाखया
चक्षुरोन्मीलितं
येन
तस्मै
श्री
गुरवे
नमः।
श्री
चैतन्य
मनोभीष्टं
स्थापितं
येन
भूतले
स्वयं
रूप
कदा
मह्यं
ददाति
स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं
श्री।
पिछले हफ्ते
हमने
गोवर्धन
इनका
जो नाम है
इसका
अर्थ
जानने
का प्रयास
किया।
जो
प्रथम
शिक्षा
गिरिराज
गोवर्धन
हमें
दे रहे हैं,
कैसे
हम
हमारी
भक्ति
में
हमारे
मन
इंद्रियों
को
आत्मा
के साथ
उसमें
वृद्धि
कैसे लाएं।
गोवर्धन,
तो
गोवर्धन
स्वयं
वो
ये
सिखा रहे
हैं
कि
कैसे
गौ
गोपाल
गोप
एवं
गोपियों
के
आनंद का
वो वर्धन किस प्रकार से करते हैं। अब उनको हरिदास वर्य ये दर्जा उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि केवल साल में एक बार जब गोवर्धन पूजा होती है केवल उसी समय वो भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते, हर क्षण उनका हर क्षण हर पल उनका सर्वस्व वो भगवान की सेवा में है। तो हमने पिछली बार ये चर्चा की थी कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बनने के लिए जो अनन्य भक्त हैं उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हमें ये सीखना है, जैसे गोवर्धन ये सिखा रहे हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हम कैसे लाएं, या भक्ति का अर्थ है वृद्धि। यदि वृद्धि नहीं हो रही तो भक्ति नहीं हो रही। प्रोग्रेशन एंड डिवोशनल सर्विस, दे आर सिनोनिम्स। इफ देयर इज नो प्रोग्रेशन व्हिच मींस देयर इज नो डिवोशनल सर्विस। वर्धन, हर समय गोवर्धन हमें सिखा रहे हैं कि हमारी इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की इंद्रियों को कैसे आनंद प्रदान करें। हालांकि भगवान तो आनंद घन है परंतु हम हमारी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान के असीम आनंद में भी हम वृद्धि कर सकते हैं। असीमित आनंद जो भगवान के अंदर है उस असीमित आनंद में वृद्धि हमारी थोड़ी सी भक्ति से हम करा सकते हैं। तो सोचिए हमारे स्वयं की वृद्धि कितनी होगी। तो आज हम दूसरी शिक्षा लेंगे गोवर्धन से, हम जो सीखते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर वो अपने टीकाओं में गोवर्धन अष्टकम के संदर्भ में कहते हैं, दशकम, गोवर्धन दशकम के संदर्भ में, कि ये जो दूसरी शिक्षा है ये है लौल्यम। पिछली बार हमने चर्चा की गोवर्धन कैसे हमें भक्ति में वृद्धि हो, लेवल्स हमारे बढ़ते रहें भक्ति में, प्रोग्रेशन के वो सिखाया। लौल्यम आज हम सीखेंगे गोवर्धन से, लौल्यम। ये लौल्यम शब्द चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जहां रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद चल रहा है। रामानंद संवाद में ये लौल्यम शब्द आता है। साधारणतः ये लौल्यम शब्द हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या अर्थ है इसका, परंतु चैतन्य चरितामृत में ये जो सुंदर श्लोक है जिसमें लौल्यम को एक करंसी की भूमिका दी गई है, रकम जिसे कह सकते हैं, मूल्य जिसे कह सकते हैं। तो ये सुंदर श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी हैड इवन बाय पायस एक्टिविटी इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। इट कैन बी अटेन्ड ओनली बाय पेइंग वन प्राइस, एकलम मूल्यम, दैट इज इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन इट। इफ इट इज अवेलेबल समवेयर एनीवेयर वन मस्ट परचेज इट विदाउट डिले, है ना। जब कोई अच्छी डील मिलती है हमें इस संसार में, कोई मोबाइल का अच्छा डील मिल रहा है, लैंड की अच्छी डील मिल रही है, मकान की अच्छी डील मिल रही है, क्या करते हैं लोग, क्या कहते हैं, तुरंत तुरंत खरीद लो, डील अच्छी है। तो यहां पर चैतन्य चरितामृत हमें सिखा रहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के साथ हम वो आध्यात्मिक डील करना चाहें और भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहें, यहां पर तो सीधा कह दिया है, खरीदना चाहें, बिक रहे हैं भगवान, खरीदार नहीं है यहां। इस श्लोक के अनुसार भगवान बिकने के लिए तैयार हैं, क्या हम भगवान को खरीदने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, परंतु जब हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो जेब में रकम होनी चाहिए कि नहीं, कि ऐसे ही खाली जेब घूम रहे हैं शॉपिंग करने के निकले हैं कि शॉपिंग करेंगे आज, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो हम यदि भगवान जो कि अमूल्य है, वैल्यू इनवैल्यूएबल जिसको कहते हैं, उनको यदि हम खरीदना चाहें तो यहां पर बताया गया कि है वो अमूल्य भगवान का भी मूल्य बताया गया है यहां पर। इसे कहते हैं अचिंत्य भेद भेद तत्व, प्राइसलेस कृष्णा ऑल्सो हैज अ प्राइस, लौल्यम, इंटेंस ग्रीड। अब ये हमें बहुत महंगा लग रहा है बहुत, भगवान अगर भगवान साधारण नहीं है तो उनकी प्राइस भी साधारण नहीं होगी। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि अन्य कितने सारे 33 करोड़ जितने देवता होंगे उनकी पूजा आराधना में संसार लगा होगा, और भी कलयुग में तो कितनों के पूजा आराधना में लोग लगे हुए हैं। हम लोग जो भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के शरण में आए हैं या आना चाहते हैं, तो हम जो चंद सहस्त्र मनुष्यों में से, सहस्त्रों मनुष्यों में से हम जो चंद यहां पर एकत्रित, हम ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान, कि हम भगवान को चाहते हैं हमारे जीवन में। तब फिर एक ही प्रश्न, भगवान और भगवान के प्रतिनिधि सारे हमारे गुरुवर्ग हमसे एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तैयार हो? कीमत अदा करने के लिए क्या हम तैयार हैं? ये प्रश्न आज के हमारे सेशन में हम सब से पूछा जा रहा है, क्या हम कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ध्यान में रखिए, एकादशी है आज, और वो भी विजया एकादशी। एकादशी के पावन अवसर पर साक्षात श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, ललिता विशाखा, उनके सारे पार्षदों के सामने हमने जोर से हरिबोल बोला है। तो बहुत ध्यान से भगवान ने सुन लिया है, नोट कर लिया है, और भगवान भूलते नहीं हमारी तरह। तो मैं हाल ही में दयामृत महाराज इस्कॉन के हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी हैं, उनकी पुस्तक मुझे लंदन में मिली, उनके एक शिष्य ने मुझे दी। बहुत ही सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखी है, भक्ति भाव, कि भक्ति के अंदर हमारे जो इमोशंस हैं उसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तक में उन्होंने शुरुआत की है एक बहुत ही अहम मुद्दे से, तो उसके ऊपर थोड़ा आज का सेशन हमने डेवलप किया है, द सिक्स सी फॉर्मूला फॉर लवल्यम। यदि होता है ना कि हर एक चीज का कुछ फॉर्मूला होता है, आपको यदि पंचामृत बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। हम लोग अभिषेक जब भगवान का करते हैं तो पंचामृत उसका एक प्रोपोर्शन, उसका एक फॉर्मूला होता है। आपको यदि कोई व्यंजन बनाना है, आटा गूंदना है, उसका एक फॉर्मूला होता है। इडली का आटा गूंदना है, उसका अलग फॉर्मूला होता है। गेहूं का आटा, उसका अलग फॉर्मूला होता है। खिचड़ी का अलग फॉर्मूला। तो यहां पर लवल्यम, आज हम लोग किसका फॉर्मूला जानना चाहेंगे, लवल्यम, जो कि कीमत हम अदा करेंगे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी को खरीदने के लिए। तो ये सिक्स सी फॉर्मूला ये क्या है, अब पीछे मत हटिएगा आप। चॉइस, चैलेंजेस, कमिटमेंट, क्लैरिटी, कैरेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, दयामृत महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन वो है क्या, इस मनुष्य जीवन को परिभाषित यदि हम करें तो एक ही चीज से परिभाषित कर सकते हैं, हम जो चॉइसेस करते हैं या चॉइसेस लेते हैं, चयन। आवर लाइफ इज नथिंग बट मोमेंट टू मोमेंट चॉइसेस। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर टर्म यूज किया अपने पुस्तक में, वो कहते हैं, वी इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वी हैव टू डू सम वर्कआउट टू बिकम हेल्दी, स्पेशली एज अ साधक। तो वो प्रश्न पूछते हैं, एज अ साधक इफ यू वॉन्ट टू बिकम हेल्दी देन यू हैव टू वर्कआउट ऑन योर चॉइस मसल्स। जैसे कोई वर्जिश करता है तो शारीरिक मसल्स को स्ट्रांग करना चाहता है, तो एक साधक उसे भी निर्देश दिया गया है कि वो वर्जिश करे। हम लोग सब रोज वर्जिश हमें करना है, और उसकी शुरुआत यहां पर हिज होलीनेस दयामृत महाराज कहते हैं चॉइस मसल्स, वो हमारे कितने स्ट्रांग है, वहां से शुरुआत होगी लौल्यम की। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो हमारे अंदर चयन करने की शक्ति है, टू चूज, और दुविधा में अपने आप को हम पाते हैं, जब भी हम हमारे चॉइस मसल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, क्या खाऊं, उस पे ही दुविधा शुरू हो जाती है, कौन सा मनोरंजन, कौन सा करियर, कौन सा जीवन साथी। कल वैलेंटाइंस डे था, हर साल 14 फरवरी को लोग सोचते हैं कि किसी को गुलाब अर्पित कर दूं तो जीवन सफल हो जाएगा। किसको करूं? लेकिन चॉइस मसल्स, वो प्रश्न चिन्ह हर समय सामने रहता है। मैं राधानाथ महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था वैलेंटाइन्स डे के ऊपर, और वो कहते हैं कि ये वैलेंटाइन्स डे को पहले सेंट वैलेंटाइन्स डे कहा जाता था। एक संत हुए, सेंट वैलेंटाइन्स मतलब संत हुए क्रिश्चियन समाज के, क्रिश्चियन धर्म के, उनका नाम था वैलेंटाइन। दो संत जिनका नाम वैलेंटाइन था, कर दीजिए, चॉइस मसल्स, फोन बंद करूं या ना करूं? अभी भी यदि किसी ने चूज नहीं किया है तो आप लोग अभी कर सकते हैं। कई बार मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग, हमारी कलयुगी स्मृति बुद्धि जो कम होती जा रही है, कि हमारी मेमोरी इतनी कम कैसे हो सकती है कि एक मिनट पहले अनाउंसमेंट किया और हम भूल जाते हैं। खैर छोड़ो, तो महाराज कह रहे थे कि दो संत वैलेंटाइन नाम के हुए और दोनों संत ब्रह्मचारी थे। बोथ सेंट वैलेंटाइन्स देवर सेलिब्रेट मॉन्क्स। देखिए क्या आयरनी है कि 14 फरवरी को क्या होता है और किसके नाम से वो मना रहे हैं उसको। तो महाराज फिर उसको थोड़ा उसका लॉजिक लगा है कि ईस्टर्न यूरोप वगैरह में स्प्रिंग सीजन वो मिड फरवरी से शुरू होता है, और ये स्प्रिंग सीजन में पक्षी जो हैं वो बहुत उत्तेजित होते हैं मैथुन सुख के लिए, विशेष रूप से कबूतर। सो दे आर वेरी मच इनटू मेटिंग, इट्स अ मेटिंग सीजन फॉर बर्ड्स स्पेशली पिजन्स। तो वहां के पाश्चात्य देश के लोगों ने सोचा कि ये जो मिड फरवरी जब पक्षी मना रहे हैं मैथुन उत्सव, तो हम क्यों नहीं मनाए। तो फरवरी का मिड फिर उन्होंने 14 ढूंढा ये डेट। अब ये डेट ऑलरेडी सेंट वैलेंटाइन्स क्रूसिफिक्शन, उनको मारा गया था क्योंकि वो प्रचार करते थे जीसस क्राइस्ट का, क्रिश्चियनिटी का। सो ही वाज क्रूसिफाइड, बोथ ऑफ देम वर क्रूसिफाइड ऑन 14th November। तो इसलिए पहले से 14th नवंबर वैलेंटाइन्स, सेंट वैलेंटाइन्स डे नाम से फेमस था, लेकिन अब ये कबूतरों के पीछे ये हम उत्सव मनाएंगे लेकिन नाम देंगे सेंट वैलेंटाइन्स का। तो महाराज अपने लेक्चर में कह रहे थे कि न्यू वृंदावन में वहां के जो मैनेजर्स, मालती माता जी इत्यादि, उन्होंने क्या किया कि ठीक है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है वेस्ट में, ये नहीं कि यहां पे भी कम हो गई, यहां पे भी बहुत है। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट किया कि सब लोग आकर, राधा वृंदावन नटवर के डीटीज थे वहां पर न्यू वृंदावन में, तो उनको आकर रोज ऑफर करो कि राधा कृष्ण यू आर माय वैलेंटाइन। तो महाराज कह रहे थे कि उस प्रकार से एक्चुअली सेंट वैलेंटाइन विल ब्लेस बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल ऑन दैट डे, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओनली द पिजन्स विल ब्लेस देम। तो ये सारी चीजें कि हर समय ये विकल्प हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, किसका चयन करूं किसका नहीं करूं। तो चॉइस, ये आज हम यहां से शुरुआत करेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो दयामृत महाराज कहते हैं कि हम कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति इत्यादि का चयन करते हैं किसके आधार पर? आकर्षण। सबसे पहले आधारशिला क्या है? आकर्षण। और दूसरा है जरूरत। तो आकर्षण जो है वो प्लेजर फैक्टर, और जो जरूरत है वो है सर्वाइवल फैक्टर। अब देखिए, कई बार हमको बहुत सी चीज और व्यक्ति, जगह इत्यादि हमको चुनना पड़ता है, हमको पसंद नहीं है। कॉलेज ऑफिस में जाना पसंद नहीं है, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। क्यों करते हैं? क्यों हम चुनते हैं कि ऑफिस जाएं, टाइम पर जाएं, 8-8 घंटे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, टाइम पर यूनिफॉर्म पहनकर इतने घंटों तक वो इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ें? कोई उसके अंदर रस नहीं है, कोई उसके अंदर जूस नहीं है। हमारे पिछले गुरुवार के कार्यक्रम में मैं के वाग कॉलेज के स्टूडेंट्स को बता रहा था कि एक हमारा जीवन होता है टेक्निकल और एक होता है इमोशनल। तो टेक्निकल और इमोशनल को हम कैसे बैलेंस करते हैं कि टेक्निकल को यूज करते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए सेलफोन है या कोई कंप्यूटर है, बहुत टेक्निकल चीज है ये, लेकिन हम सेलफोन और लैपटॉप को यूज किस लिए करते हैं? व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, इमोशनल कनेक्शन के लिए, किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए। सो वी आर यूजिंग समथिंग सो टेक्निकल एज दिस मशीन टू फुलफिल अवर इमोशनल नीड। समझ में आ रहा है? तो हमारे जीवन के अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके अंदर कोई रस नहीं है, उसको यूज करके हम रस। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था अभी, आप देखोगे गन्ने के रसवंती ग्रह सब जगह पर सीजन चल रहा है। तो ये गन्ने को आप देखोगे तो देखने में उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखती। गन्ने के अंदर दिखने में कोई गन्ना बहुत सुंदर नहीं है, लोग गन्ने को ले लेके फ्लावर पॉट में नहीं लगाते कि चलो डाइनिंग टेबल पर फ्लावर पॉट में गन्ने तोड़ तोड़ कर लगाए। और कोई जब ये रसवंती ग्रहों में भी जाता है तो वहां पर गन्नों को देखने के लिए नहीं जाता है। उसको गन्ने को कब देखने में मजा आता है? जब वो कुचला जाता है गन्ना, है ना? गन्ने को उस मशीन से जब वो व्यक्ति कुचलता है और रौंदा जाता है और फिर पलट पलट के उसको दूसरी बार, तीसरी बार, और उसमें से जब वो रस निकलता है तो वो रस इतना सा इकट्ठा होता है उसके पतीले में, इतने सारे गन्ने उसमें से वो मशीन में से पास करके इतना सा रस इकट्ठा होता और उसमें फिर वो घंटियों की आवाज और घुंघरू वगैरह लगा देते हैं उसमें, तो घुंघरू की आवाज सबको, बैठे बैठे वो सब देखते रहते हैं। तो आवाज आ रही है मतलब मशीन चल रही है, आवाज आना मतलब मशीन चल रही है, मशीन चल रही है मतलब गन्ना वहां पर कुचला जा रहा है, गन्ना कुचला जा रहा है मतलब पतीले में रस निकल रहा है। तो फाइनली उनका फोकस रस के ऊपर है। अब मान लो उस रसवंती ग्रह में वो तीन चार जितने भी गन्ने उसको कुचल कुचल कर पूछा, पूरा भूसा बन गया, अभी उसके अंदर एक बूंद रस नहीं है, निकाल दिया पूरा उसको, कैसा दिखता है वो कुचला हुआ गन्ना? पूरा कुचला हुआ गन्ना अब प्लेट में सजा के आपको लाके दे रहा है, ले खा। कैसा लगेगा आप? उसको फेंका जाता है और जो रस है वो परोसा जाता है। तो वैसे ही हम लोग जो आनंद के खोज में हैं, ये जो टेक्निकल हमारा लाइफस्टाइल है वो गन्ने के भूसे के समान है, उसको कुचल कुचल कर हम उसके अंदर से रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं, हो क्या रहा है? वो रोलर्स है ना, रोलर्स वो मशीन के, वो रोलर्स के अंदर हम मंडे से लेके सैटरडे फ्राइडे तक कुचले जाते हैं और फिर हफ्ते के एंड में या महीने के एंड में फिर थोड़ा सा जूस उसमें से गिरता है पगार के रूप में। उसमें भी जूस नहीं है, केवल वो तो कागज के पन्ने हैं और क्या है। उसको लेकर जाकर जब हम कुछ रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन भोगते हैं तब जाकर वो फुलफिलमेंट हमको मिलता है। तो ये जो अट्रैक्शन और नीड फैक्टर, पेजावर स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ महाराज उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि इस संसार में जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या करता है गुरुत्वाकर्षण? कोई भी वस्तु को आप फेंको, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा उसको, नीचे खींचेगा। तो कहते हैं एक है गुरुत्वाकर्षण, एक है कृष्णाकर्षण। तो जो कृष्णाकर्षण है वो आपको ऊपर लेता है, ऊपर खींचता है। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण हमें ऊपर खींचेगा। इस संसार का जो लॉजिक है उसके ठीक विपरीत, ये जो बड़े बड़े रॉकेट्स छोड़ते हैं ये लोग अंतरिक्ष में, तो इसमें कहा जाता है कि जब ये रॉकेट छोड़ते हैं अंतरिक्ष में तो सबसे ज्यादा फ्यूल जो वो रॉकेट कंज्यूम करता है वो इनिशियल ब्लास्ट ऑफ जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा ना, वो कितना कितना वो आग छोड़ता है नीचे से, धुआं, आग, आवाज, सबसे ज्यादा फ्यूल तभी यूज होता है क्योंकि वहां से उसको जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है अर्थ का, वो इतना स्ट्रांग है कि उसके अगेंस्ट जाना है उस रॉकेट को, इतना भारी, इतना टनेज उसके अंदर है, इतना बड़ा वो रॉकेट उसको अंतरिक्ष में फेंकना है तो उसके लिए कितनी शक्ति, कितना ईंधन वो इस्तेमाल करता है। वैसे ही हम लोग सब वो इतने भरकम रॉकेट के समान है, लेकिन अगर ईंधन अंदर नहीं है तो इस संसार का जो ग्रेविटी है वो हमें ऊपर छोड़ेगा ही नहीं। कई बार आप देखो रॉकेट थोड़ा सा ऊपर जाता है, कई गिर जाते हैं नीचे, क्योंकि उनके अंदर वो इतनी शक्ति उन्होंने डाली नहीं। तो हम भी कई बार भक्ति में तैयार हो जाते हैं, फिर काउंटडाउन शुरू होता है, जैसे उसका ब्लास्ट ऑफ से पहले काउंटडाउन शुरू होता है 10, 9, 7, 2, 3, 1, फिर जैसे ब्लास्ट ऑफ, कई बार भक्ति में हम भी ऐसे ब्लास्ट ऑफ लेते हैं, जनवरी का महीना 2015, बस अभी जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये वो ब्लास्ट ऑफ गया ऊपर। कहां गया? तो पेजावर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से हम आकर्षित हों ये जो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षण ये हमें पैदा करना है श्रवण और कीर्तन के द्वारा, और हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है भगवान के प्रति आकर्षण, परंतु वो ढका हुआ है। इसलिए तो कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, उदय करना है उसको। तो जरूरत और प्लेजर फैक्टर, अब देखिए ये दोनों को हमें साधना भक्ति में साथ में लेकर चलना है। यदि हम कृष्ण भक्ति को केवल प्लेजर फैक्टर मानेंगे तो प्लेजर फैक्टर हर समय ऑप्शनल रहता है। इफ वी ओनली कंसिडर अवर कृष्ण भक्ति टू बी प्लेजर, इट विल बी ऑलवेज ऑप्शनल। रिस्क ऑफ, वी आर रनिंग द रिस्क ऑफ कीपिंग इट ऑप्शनल। लेकिन जरूरत अगर उसको हम बना लें तो उसको हम ऑप्शनल नहीं रखते। क्या बॉस को हम फोन करके पूछते हैं मंडे, क्या आऊं कि नहीं आऊं, आप क्या कहते हो? कभी बॉस को ऐसा पूछते हैं? क्या बॉस उल्टा हमको ऐसा पूछता है, क्या आने की इच्छा है आज? अच्छा नहीं आने की इच्छा, ठीक है ठीक, घर बैठो। नहीं, जब जरूरत होती है तो हम उसको सबसे अहम बना लेते हैं। तो वैसे ही प्रश्न ये है कि क्या हमने भगवान श्री कृष्ण को अपनी जरूरत बनाई है या केवल प्लेजर फैक्टर की तरह उसको ऑप्शनल रखा है। सो यस, वी नीड टू डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, बट दैट शुड बिकम अवर नीड। जैसे ये एक नेगेटिव उदाहरण होगा, कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, स्मोकर जो है, धूम्रपान करने वाला, वो क्यों धूम्रपान करता है? प्लेजर फैक्टर के लिए। परंतु इतना धूम्रपान वो कर लेता है कि अब वो धूम्रपान उसकी जरूरत बन जाती है कि नहीं? चाहते हुए भी वो अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब वो सिगरेट उसकी जरूरत बन गई है। तो प्रश्न है कि यदि आए दिन धूम्रपान कर वो व्यक्ति चेन स्मोकर बन सकता है, और बोलने पर भी इतने सारे सेमिनार और इतनी सलाहें सब कुछ उसको देने पर भी वो छोड़ नहीं सकता, तो हम इतने सालों से जो बीड़ बैग घुमा रहे हैं, हम क्यों नहीं एडिक्ट हो रहे? एक तुच्छ सा स्मोकर एडिक्ट हो जाता है, एक शराबी वो एडिक्ट हो जाता है। अरे हम वो सब छोड़ो, हम सब पहले चाय के पीछे कैसे पागल थे पहले, कि चाय नहीं तो जिंदगी नहीं। जिंदगी और चाय सिनोनिम्स हो गए थे। क्यों? हरिनाम के प्रति वो एडिक्शन नहीं हो रहा है। बहुत स्पॉन्टेनियस डिटैचमेंट है हरिनाम के प्रति हमारा, है ना? जैसे मैंने खुद देखा है कि कई ऐसे शराबी, शराब की दुकान देखते ही उनके मुंह में पानी, ऐसे लाल बोलते ना, लाल टपकती है। स्मोकर्स ऐसे, वो पान पट्टी की दुकान या जो भी सिगरेट पैक खाली ऐसे फेंका हुआ, कुछ नहीं है उसके अंदर, फेंका हुआ सिगरेट पैकेट, उसको देखकर तलब, ये शब्द जानते ना, तलब चढ़ती है उनके अंदर। बीड़ बैग देखकर कभी होता है हमें? तो जैसे एक शराबी शराब पी पी कर वो शराब को अपनी जरूरत बना लेता है, क्यों ना हम हरिनाम पीते 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 क्यों ना हम हरिनाम को अपनी जरूरत बनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक हरे कृष्ण महामंत्र के बाद कितना जल्दी हम हाथ नीचे कर लेते। जैसे कई बार जब कीर्तन शुरू होता है तो यदि कीर्तन लेक्चर के बाद वाला हो तो बहुत मुश्किल होता है वो कीर्तन। खाली कीर्तन उसके बाद सीधा प्रसाद है तो ठीक है, अभी दो तीन डेढ़ घंटे का लेक्चर हुआ है, एक तो लेक्चर सहन करना पड़ा पहले, फिर उसके बाद में हमारे प्रोग्राम्स में होता है अब हम कीर्तन करेंगे, और वो कीर्तन में फिर वो जो कीर्तनकार होता है गवैया होता है वो कोई ऐसी धुन शुरू करता है कि आप जानते हो कि ये धुन के चार पार्ट हैं। आपको मालूम है ये जो मेलोडी शुरू की है इसने, ये मेलोडी के चार पार्ट हैं और ये पहले पार्ट को 10 बार गा रहा है, अभी तक दूसरे पार्ट पे नहीं आया और यहां 10:15 हो गए, बाल्टियां लग गई हैं बाहर। फिर वो दूसरे पार्ट को और 10 बार गाएगा, फिर आलाप ले लेकर बीच में राधे श्याम हरि बोल गौर निताय, यहां पे चूहे दौड़ रहे हैं हाथी दौड़ रहे हैं अंदर, फिर तीसरा पार्ट फिर चौथा पार्ट, फिर बाद में फास्ट ट्यून अलग होती हो। इसलिए पहले जब मैं कीर्तन करता था तो एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही प्रभुपाद धुन में शुरू करता था तो हरि बोल सब लोग, प्रभुपाद धुन में सब हरि बोल ज्यादा बोलते थे, और कई भक्त तो आके बोलते प्रभु प्रभुपाद सबसे कृपालु हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्यून है ना वो प्रभुपाद धुन, वो इतनी कंपैशनेट ट्यून है क्योंकि उसके बाद वो खत्म ही करने वाला है, समझ जाते हैं। इसलिए मैंने वो अपने बुधवार के कार्यक्रम के बाद जैसे ही एक दो बार प्रभुपाद की हरे कृष्ण धुन गाना शुरू करते हैं तो बहुत हरि बोल वॉल्यूम बढ़ जाता है पीछे से। तो कितना एडिक्शन है हमें भगवान के नाम के प्रति या भगवान की कथा के प्रति सेवा के प्रति। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि सोचो वैलेंटाइंस डे का ही एग्जाम्पल अगर वो दें, रूप गोस्वामी कहते जस्ट लाइक अ यंग बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ यंग गर्ल और अ यंग गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ यंग बॉय स्पॉन्टेनियसली लेट माय हार्ट बी अट्रैक्टेड टू यू कृष्णा। रूप गोस्वामी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसलिए लौल्यम की शुरुआत है ये पहले सी से चॉइस, हम किसको चुनते हैं, चुनाव में हम किसको जिताना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही सरकार फिर हमारे ऊपर शासन करेगी। तो दो चीजें अब यहां पर चॉइस में यदि उसको विभाजन करें, चॉइस का विभाजन करें तो हमारे सामने है और दो सी। चॉइस के सामने और दो सी है, कन्वीनियंस और चैलेंज। सो कन्वीनियंस का मतलब है आरामदायक जीवन, कितना हम आरामदायक जीवन जीने के इच्छुक होते हैं, और एक है चुनौतियां, चैलेंज. सो इफ यू कैन, ये दिख रहा है आप लोगों, कन्वीनियंस विल लीड टू रिपीटेड बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. चैलेंज, चुनौती अगर हम लें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना मतलब चुनौती, ये समझ लो. वो हमें आराम का जीवन जीने के लिए नहीं छोड़ने वाले. अगर हमने उनको चुना है तो वो हमारे जीवन में हर समय हलचल मचा कर रखेंगे. इसलिए तमाल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद के पास गए, जुहू का वो इतना जो स्ट्रगल चल रहा था, और उस दौरान तमाल कृष्ण महाराज अमेरिका में, उन्होंने अपना जो भी जीवन बिताया, पैदा हुए वहां पर ही वो बड़े हुए, ऐशो आराम का जीवन, यहां पर मच्छरों के बीच में, चूहों के बीच में, कोई मंदिर नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं. वो जा रहे प्रभुपाद को जाके कहते हैं कि प्रभुपाद, यू सेड कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल. Prabhupada said, I still say the same, Krishna consciousness is simple. I never said Krishna consciousness is easy. There is difference between simplicity and being easy. Zameen par baithna, act of simplicity. Lekin difficult. Hai na? तो आज हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे कि यदि हमने कृष्ण भक्ति का चयन किया है, यदि 33 करोड़ देवता जितने सारे और आराध्य जो भी हो, उन सब में से यदि हमने ऐलान किया है कि मैं राधा मदन गोपाल जी को चुना हूं, मैंने अपना मतदान किसको दिया है, और चुनाव चिन्ह क्या है, बांसुरी, वो तो कब से मुफ्त में हमको पानी दे रहे हैं, कब से मुफ्त में हमको बिजली दे रहे हैं, हा? कभी हमने उनका मतदान किया? प्रश्न ये है, भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी. तो जब हम भगवान का चुनाव करते हैं, घबराइए मत, हम बताएंगे इसके बारे में ये क्या है. तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये अपना हर्बल कॉफी है, धनिये के सीड से बना है. The question is your coffee stirred well? तो इसके पीछे ये लॉजिक ये है कि कई बार कोई कॉफी या दूध जो भी हम देखते हैं कि दूध जब पीते हैं या कॉफी जो भी पीता है कोई, तो फीकी लगती है वो कॉफी, या वो दूध फीका लगता है शुरुआत में, और फिर वो पूछता है इसमें शक्कर डाली कि नहीं. व्यक्ति कहता है हां भाई शक्कर डाली है. तो ये कॉफी फीकी क्यों लग रही है यदि शक्कर डाली है? तो हुआ क्या है कि शक्कर तो है परंतु वो शक्कर को हिलाया नहीं है, इसलिए वो कॉफी कड़वी लग रही है या फीकी लग रही है. कॉफी इज देयर, शुगर इज ऑल्सो देयर, बट इट इज नॉट स्टर्ड वेल. तो वैसे ही हम लोग कृष्ण भक्ति में आ गए, हरिनाम जैसी मीठी वस्तु को लिए हैं, लेकिन भगवान देखते हैं कि इसके जीवन में मेरा मधुर हरिनाम तो है लेकिन वो नीचे सेटल्ड है. कप के नीचे वो शक्कर सेटल्ड है. तो फिर भगवान क्या करते हैं, वो पूरे हमारे आध्यात्मिक जीवन की कॉफी को मीठा बनाने के लिए भगवान हिलाना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? हमारे जीवन को, हमारे जीवन की कॉफी को हिलाना शुरू करते हैं। और जब हिलाना शुरू करते हैं तब हमको लगता है कि भगवान आप बांसुरी बजाते हो या फिर युद्ध के पहले शंखनाद कर रहे हो। द शेक्स एंड द शॉक्स ऑफ आवर लाइफ, इट इज नथिंग बट द स्टरिंग ऑफ कॉफी विच इज गोइंग ऑन बाय कृष्णा। तो हमारे जीवन में जब चुनौतियां आए तो, और अगर चुनौतियां नहीं आ रही तो समझ लेना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक कॉफी नीरस है, कड़वी है, मिठास नहीं है। अब होता क्या है कि जब वो प्याला सामने रख दिया जाता है और अभी हमारे अंदर इच्छा है उसको पीने की, हमने एक घूंट लिया लेकिन पता लगा कि वो फीकी या कड़वी है, और फिर जब हम उसको हिलाना शुरू करते तो हमको रुकना पड़ता है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, हिलाएंगे तो रुकेंगे, रुकने के बाद वो जो धैर्य है, जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, उसके बाद फिर वो जो कॉफी है उसकी मिठास हमें मिलेगी। तो ऐसे हमारे जीवन में भगवान वो मीठापन हम आस्वादन करें उससे पहले भगवान हमारे जीवन के अंदर इतना हमारे जीवन को हिलाते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हिलाने की क्या जरूरत है, बिना हिलाए मीठा करो ना मेरी कॉफी को। हम क्या चाहते हैं? मीठी कॉफी भी चाहते हैं और उसको हिलाना भी नहीं चाहते। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वी वॉन्ट द बेस्ट ऑफ बोथ। कृष्णा व्हाई कांट यू टेक मी बैक होम बैक टू गॉड इट पीसफुली, शांति से ले जाओ ना, इतना हो हल्ला करके मेरे को हिला हिला के इतनी तकलीफें देकर, सब कुछ मेरा लूट के, बीमारी देकर, इधर उधर थपेड़े मारकर, फिर कहते हो चलो अभी घर पे। इसलिए मैं लंदन में कह रहा था, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा प्रोमिसेस सेफ लैंडिंग बट नॉट अ काम फ्लाइट। द फ्लाइट विल बी वेरी टर्बुलेंट बट लैंडिंग इज वेरी सेफ। Whereas in this material world, it is the opposite. The flight is very calm, एकदम आरामदायक जीवन जीते रहो जीते रहो, बट लैंडिंग फेटल। मान लो, जैसे मैं बता रहा था ना, एरोफ्लोट एयरलाइंस वो लोग कैसे एडवर्टाइज करते हैं, वो कहते हैं वी गारंटी टेक ऑफ। वो लोग कहते हैं वी गारंटी टेक ऑफ। तो यदि कोई एयरलाइंस आपको कहे कि आपको बिजनेस क्लास हम देंगे, अपग्रेड करेंगे फ्री में, बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल कीजिए और सारी सुख सुविधा प्लेन के अंदर, एकदम काम फ्लाइट और प्लेन के अंदर सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और फिर उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेकिन लैंडिंग जो है उसमें आप बचोगे कि नहीं आप देख लेना। एक व्यक्ति पहली बार एयरक्राफ्ट में गया, उसने देखा पायलट अंदर बैठा हुआ, वो हेडफोन वगैरह लगाया, जाके उसके हेडफोन खींच रहा है। मतलब क्यों खींच रहा है भाई, पैसे हमने दिए, गाने तू सुनेगा? तो यदि किसी को पता नहीं कि एयरलाइंस के अंदर चाहे तुम्हारी फ्लाइट कितनी भी टर्बुलेंट हो, सब लोग प्रार्थना क्या करते हैं, वो सब लोग आपने अनुभव किया होगा प्लेन के अंदर, वो जब प्लेन लैंड कर रहा होता है सबसे ज्यादा डरे हुए रहते हैं, इधर उधर सब पकड़ लेते हैं, बांधे हुए तो रहते ही पहले से पकड़ लेते हैं, जैसे ही वो ठीक से लैंड कर लिया उसके बाद में तालियां भी बजाते हैं सब लोग, हाँ भैया पहुंचा दिया, फोन तुरंत पहुंच गया भैया, आ गए ना गाड़ी लेके, पहुंच गया मैं जिंदा जिंदा पहुंच गया। इतने न्यूज आजकल, वो एयरलाइन तो कोई तो एयरलाइन गायब भी हो गया, पता ही नहीं कहाँ गया है। आजकल कलयुग में ये हाल है, लैंडिंग तो छोड़ो वो है कहाँ, सारी दुनिया ढूंढ रही है गायब कहाँ हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस, लॉर्ड कृष्णा प्रोमिसेस सेफ लैंडिंग, नॉट अ काम फ्लाइट। तो इसलिए यदि हमने भगवान को अपना मत दिया है कि हे राधा मदन गोपाल आपको मैं अपना स्वामी बनाना चाहता हूं, तो तैयार रहिए भगवान चम्मच लेकर अब हिलाना शुरू करेंगे। क्यों? कॉफी को मीठा करने के लिए, है शक्कर लेकिन हमने उसको हिलाया नहीं और हमको हिलाना भी नहीं आता है और हमको पता भी नहीं है कि शक्कर है, हम केवल कंप्लेन करते रहते हैं कड़वी है कड़वी है, कोई टेस्ट नहीं हरि नाम में, कोई टेस्ट नहीं। भगवान कहते अच्छा नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, फिर भगवान चम्मच लेके जब हमारी जिंदगी को हिलाते हैं तब फिर हरि नाम ही एकमात्र सहारा होता है। शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जब तकलीफें होती हैं तब बीड़ बैग ही याद आती है, तब टीवी का रिमोट याद नहीं आता है ना, तब बीड़ बैग ही याद आती है। तो हम एक एक उदाहरण लेंगे, ये जो हमने फर्स्ट सी लिया है जिसके अंदर कन्वीनियंस वर्सेस चैलेंज, सबसे पहला उदाहरण गोवर्धन पूजा से ही ब्रजवासियों का। तो ब्रजवासियों का उदाहरण यदि हम लें तो कन्वीनियंस और चैलेंज, कन्वीनियंट क्या था ब्रजवासियों के लिए, इंद्र यज्ञ करना जो हर साल सेट था, उनके सेवा लिस्ट भी रेडी थी हर साल कौन कौन क्या करेगा इंद्र यज्ञ में, हा? होता है ना हमारी सेवा लिस्ट रेडी रहती, तो उनकी इंद्र यज्ञ की सेवा लिस्ट सब रेडी थी, नंद महाराज हर साल की तरह वार्षिक इंद्र यज्ञ कर रहे थे, कन्वीनियंट, और उसको उनको रिजल्ट्स भी उनका हर साल मिलता था, इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा और जो भी कुछ उनको चाहिए उनके आराम का साधन प्रदान कर इंद्र दे देते थे। तो ब्रजवासियों का आराम का जीवन चल रहा था हर साल इंद्र यज्ञ करने की वजह से। यहां पर भगवान आए, उन्होंने नंद महाराज ने चुना किसको पुत्र के रूप में, भगवान कृष्ण को, पुत्र के रूप में इंद्र को नहीं चुना, पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण को चुना। तो भगवान ने कहा भाई मुझे चुना है तो मैं तो अब चम्मच लेकर हिलाऊंगा, मैं तो ये आराम का जीवन नहीं जीने दूंगा। तो इसलिए भगवान इंद्र यज्ञ रोककर उनको कह रहे हैं गोवर्धन की पूजा करो। तो अब इनके लिए ये इनकन्वीनियंट था बाहरी रूप से, होता ना कई बार हमारा जीवन एक सेट तरीके से चल रहा है, बहुत बार जब परिवार का एक सदस्य कृष्ण भक्ति में आता है तो हलचल मच जाती है बाकी सदस्यों में, अचानक क्या हो गया तेरे को, अच्छा भला था हमारी तरह अच्छा भला रहता था, अभी ये नहीं कांदा नहीं खाएगा, अभी ये नहीं खाएगा, अभी सुबह सुबह बीड़ी बैग लेके बैठ जाता है। कई हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं घर जाते हैं तो उनके उनके माता पिता डर जाते हैं, मतलब वो अगर फोन पे कह दे कि मैं पिक्चर देख रहा हूं, हाँ बेटा पिक्चर देखता रहे, वो ही कह दें कि 31 दिसंबर में हरे कृष्णा मंदिर में बैठा हूं कीर्तन में। हरे कृष्णा मंदिर में क्या कर रहा है? टेंशन। तो परिवार का एक भी सदस्य यदि कृष्ण भक्ति में लगता है तो बाकियों के अंदर हलचल मच जाती है कि कैसे ये कैसे हमें छोड़कर, है ना, हमारे हमारे परंपरा को छोड़कर कैसे ये दूसरी परंपरा को ज्वाइन कर रहा है, अपसंप्रदायिक बन रहा है। तो यहां पर भगवान ने कह दिया गोवर्धन पूजा, ये सब कुछ बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो। तो उनके लिए ये चेंज को अपनाना इनकन्वीनियंट था, चैलेंज, चुनौती, और ऐसी चुनौती कि भगवान ने यहां तक उनको पहुंचाया, उस लिमिट तक पहुंचाया कि संवर तक बादल पूरे वृंदावन का विध्वंस करने के लिए बाढ़ वगैरह सब कुछ आ गई। ऐसा नहीं कि पहले से भगवान यहां पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को पता था कि इंद्र जो है वो इस प्रकार से वो उपद्रव करेंगे। भगवान जानते थे कि इंद्र उपद्रव करेंगे और भगवान चाहते थे कि वो करे उपद्रव, इसलिए चिड़ा चिड़ा कर गोवर्धन पूजा कर रहे थे इंद्र को, इंद्र को दिखा दिखा कर, ए ले ये इंद्र तुम्हारे लिए ये पका हुआ था ना, मैं गोवर्धन को खिला रहा हूं, देख। चिड़ा चिड़ा कर चिड़ रहे थे इंद्र, और इतना चिड़ गए कि संवर तक बादल। भगवान ने तब तक गोवर्धन उठाया नहीं, या नहीं कि संवर तक बादलों को कह दिया कि भाई आना मत, नहीं आओ बाढ़ करो, सब कुछ करने के बाद ब्रजवासियों को यह एहसास दिलाया कि मुझे चुना है ना, आराम का जीवन नहीं जीने दूंगा मैं। हर दिन कोई ना कोई राक्षस आते थे, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, अभी मथुरा से वृंदावन आए भगवान, आते आते कंस को मार के आ सकते थे ना, वहां से आए 11 साल वृंदावन में फिर वापस गए उसको मारने के लिए। तो कोई ये जो आराम के कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति वो यही कहेगा ना, लॉजिकल अपना जो ब्रेन लगाएगा, बोलेगा भगवान क्यों 11 साल तक इतना इत्मीनान से हम लोग लीला करते, उसको उधर ही मार के पहले आते। तो कंस को ही मार देते तो ये कोई नहीं आती पूतना या बकासुर अघासुर, कोई नहीं आता। वो सब का सरदार कौन था? कंस था। नहीं, उसको बाद में मारेंगे, भेजने दो उसको एक एक कर कर, एक एक कर। वृंदावन में हर दिन कोई ना कोई राक्षस आ रहा, हर दिन उपद्रव। तो गोवर्धन लीला से हम सीखते हैं कि भगवान को यदि हम चुनना चाहते हैं, सो वी हैव टू चूज बिटवीन कन्वीनियंस एंड चैलेंज। दूसरा उदाहरण रुक्मिणी देवी का। तो अब रुक्मिणी देवी के जीवन में हम दोनों देखें, सी कन्वीनियंस और चैलेंज। तो बहुत कन्वीनियंट था रुक्मिणी के लिए शिशुपाल से विवाह कर लेना, और चैलेंजिंग क्या था रुक्मिणी के लिए? भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना। अब कितना चैलेंजिंग था, रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध, यहां तक कि उनके पिता सब इसी अरेंजमेंट में थे, और उस दिन शादी होनी है जिस दिन उन्होंने किडनैप प्लान किया, शादी के दिन, ये है एक्चुअल वैलेंटाइंस डे। हाँ, एक्चुअल वैलेंटाइंस, रुक्मिणी ने ओरिजिनल जो लव लेटर जिसको कहेंगे वो लिखा भगवान को, प्योर लव लेटर।
और उसमें भगवान को वो कहती हैं कि मुझे कैसे आकर किडनैप करो भगवान को, और भगवान से वो अभी तक मिली नहीं है, केवल उनका लौल्यम देखिए, श्रवण कर उनके अंदर का लौल्यम देखिए कि भगवान ही चाहिए। इसलिए असली प्रेमिका रुक्मिणी देवी थी, जिन्होंने कह दिया भगवान श्री कृष्ण को, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। आजकल के वैलेंटाइंस डे में लड़कियां क्या कहती हैं, अगर तुम मिल जाओ तो पुराना छोड़ देंगे हम। या पुरानों को छोड़ देंगे, आजकल एक नहीं होता है। महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे, रुक्मिणी देवी के पास टाइम में, लाइफ इज नथिंग बट मोमेंट टू मोमेंट चॉइस, एवरी डे इन वन ईयर गोपाल विल स्पीक टू यू, मदन गोपाल विल स्पीक टू यू, एंड द अदर ईयर शिशुपाल, गोपाल एंड शिशुपाल, एंड यू आर लाइक रुक्मिणी इन बिटवीन टू चूज टू मैरी गोपाल और शिशुपाल। तो हमारे जीवन रुक्मिणी सिखा रही है कि रुक्मिणी ने चूज किया भगवान को, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को चूज कर लिया तो अब बस अब आप देखो। भगवान ने रुक्मिणी देवी को रुक्मी, जरासंध, शिशुपाल, भीष्मक, इन सब के बीच से किडनैप किया। किडनैप करने के बाद जिस रथ पर रुक्मिणी को बिठाया, भगवान ने कहा रथ तुमको चलाना है। ऐसा नहीं कि अब रुक्मिणी बैठ गई पीछे वाली सीट पर, नहीं, तुमको दिखाना। वो रथ उनको क्यों दिया चलाने के लिए भगवान ने, ये नहीं कि भगवान को रथ चलाना नहीं आता, पार्थ सारथी भगवान है, रणभूमि पर रथ चलाया है। तो रुक्मिणी को इसलिए दिया ताकि पूरे संसार में यह दृश्य सब देख लें कि रुक्मिणी ने किसको चुना है, रुक्मिणी ने भगवान को चुना है, और रुक्मिणी ने कहा है कि मुझे अगवा करो। तो भगवान, अब रुक्मिणी एक स्त्री, वो भी उस जमाने की सुसंस्कृत, और भगवान कह रहे हैं कि रथ हाँको और ऐलान करो, रथ हाँकते हुए सबको दिखाओ बताओ कि ये तुम्हारा चॉइस है, दिस इज योर चॉइस। वैसे ही भगवान, यदि हम भगवान को चुनेंगे तो भगवान भी रुक्मिणी की तरह हमको आगे करेंगे दुनिया के सामने। दुनिया के सामने कहो, अब क्या कहो दुनिया के सामने, भगवान अगर तुम मिल जाओ तो इन सब को छोड़ देंगे हम, बोलो। यदि हमारे अंदर वो हिम्मत है तब जाकर भगवान कहते हैं मुझे चुनो। तो यहां पर रुक्मिणी के उदाहरण से भगवान दिखा रहे हैं, और भगवान ने तुरंत कह दिया कि जो सेना आई थी भगवान के साथ साथ, तो उस सेना को दिखाते हुए भगवान ने रुक्मिणी से कह दिया, रुक्मिणी ये तुम्हारी सेना है। तो तात्पर्य में हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, हालांकि अभी तक तो विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह भी नहीं हुआ, और भगवान रुक्मिणी से कह रहे हैं कि ये जो सेना मैं लाया हूं रुक्मिणी, ये तुम्हारी सेना है। तो आचार्य कहते हैं कि जब कोई भक्त भगवान को चुन लेता है तो भगवान तुरंत अपना सब कुछ उसका बना देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी सेना है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के उदाहरण से कन्वीनियंस और चैलेंज, बहुत कन्वीनियंट था रुक्मिणी के लिए, शिशुपाल से विवाह कर लो बस और आराम का जीवन। और रुक्मिणी का बाद में भी अगर आप वो दशम स्कंध में पढ़ो, प्रणय कलह एक और चैप्टर है दशम स्कंध में, तो रुक्मिणी का बाद में द्वारका में आराम का जीवन चल रहा था। भगवान ने देखा ये कि आराम का जीवन फिर से कैसे शुरू हो गया इसका। तो आराम से चामर हिला रही है रुक्मिणी, भगवान के सुंदर मुख को देख रही है, सेवा में लगी हुई है, प्रोमिनेंट क्वीन है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे भक्त के जीवन में एक्साइटमेंट नहीं हो तो मुझे मजा नहीं आता। ये शांति से चामर, इसलिए कई बार आप देखो पुजारी एकदम प्रेम से, पुजारी जब चामर हाथ में लेते हैं तो कुछ अलग ही मोड में चले जाते हैं। पहले जो भी कुछ वो ऑफर कर रहे हो, जैसे ही चामर हाथ में आता है तो पुजारी एकदम स्टाइल में वो चामर यहां से वहां, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, एकदम रम जाते हैं चामर। फिर बाद में भगवान देखते हैं कि बहुत आराम से चामर घुमा रहा है, मक्खी को बेचते हैं वो, तो मक्खी इधर उधर उधर, फिर उसको, फिर भगवान की मक्खी हटाने के बदले खुद की मक्खी हटाना शुरू करते। तो ऐसे भगवान ने देखा रुक्मिणी बहुत आराम से चामर हिला रही, तो भगवान शुरू किए, रुक्मिणी तुमको नहीं लगता तुमने बहुत बड़ी गलती की वो लव लेटर लिखकर मुझसे शादी कर कर? अब वो चामर हिलाना थोड़ा, रुक्मिणी की कॉफी हिलने लगी अभी। क्या बोल रहे हो? अरे कोई मेरा आता पता नहीं है, किस कौन मेरे बाबा है किसी को मालूम नहीं, कोई कहता है कि नंद यशोदा है, कोई कहता है देवकी वसुदेव, पता नहीं किससे पैदा हुआ मैं, मेरी जात भी कोई जानता नहीं, मेरी जात क्या है, कभी तो मैं ग्वाला, कभी यहाँ पे क्षत्रिय द्वारकाधीश बना बैठा हूं, कोई जानता नहीं मैं, कास्ट क्या है मेरी। भगवान बोल, रुक्मिणी चामर सुन रही है सब, गलती की है रुक्मिणी तुमने, चॉइस तुम्हारा बराबर नहीं था। और भगवान एकदम सीरियसली कह रहे थे, भगवान ऐसे मजाक में नहीं कह रहे थे, भगवान एकदम सीरियस टोन में रुक्मिणी से कह रहे। और रुक्मिणी इतनी सिंपल है कि वो ये सब, अब वो भगवान को बोल भी नहीं रही है। सत्यभामा होती, सत्यभामा का मूड अलग है। सत्यभामा को भगवान अगर ये लीला उसके साथ करते, सत्यभामा के साथ, तो सत्यभामा भगवान से कहती है, अच्छा ये जो सब फालतू बातें बोल रहे हो ना, चुप करो ये सब, मैंने जो भी चॉइस किया है वो बराबर ही है और होगा, इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जो चामर मैं हिला रही हूं ना उसको स्वीकार करो। सत्यभामा उस प्रकार के भाव में, रुक्मिणी लेकिन एकदम सौम्य शांत सुनते जा रही हो चामर हिला। गलती की रुक्मिणी तुमने, अभी भी टाइम है। कितना अच्छा था वो शिशुपाल, इतना बड़ा राजा, कितना प्रेम करता था तुमसे, कितना प्रेम करता था उस शिशुपाल। रुक्मी ने कहा, भीष्मक ने कहा, शिशुपाल बेकार फालतू लेटर लिखकर मुझे बुलाया और किडनैप करो, ये अभी भी टाइम है, हा? जा सकते हो। शिशुपाल गिर गई, रुक्मिणी तो वहीं गिर गई, ये सब सुन के बेहोश हो गई। और फिर भगवान ने देखा, अरे तो बेहोश हो गई। तो भगवान फिर उठाए रुक्मिणी को, बहुत सुंदर बताया गया है कि भगवान ने रुक्मिणी को अपने दो हाथों से उठाया और चतुर्भुज रूप लिया, दो हाथों से, चार चार हाथ भगवान को उस समय और दो हाथ पैदा करने पड़े। चतुर्भुज रूप लेकर दो हाथों से रुक्मिणी को उठाते हैं और एक हाथ से, दोनों हाथों से रुक्मिणी को आचमन से पानी छिड़का कर रुक्मिणी को पुनः होश में ला रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि क्यों भगवान ने रुक्मिणी के साथ इस प्रकार का मजाक किया, प्रणय कलह उसको कहा गया, कलह लेकिन प्रणय वाला। क्यों? जैसे कि यदि कपूर है, कपूर है, कपूर को जब आप मसलोगे तो कपूर की जो सुगंध है वो फैलेगी। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कपूर के समान हैं। और भगवान जब देखते हैं कि इसकी सुगंध फैल नहीं रही है तो पूरे वृंदावन कॉलोनी में उसकी सुगंध फैलाने के लिए भगवान क्या करते हैं? उसको मसलना शुरू करते हैं। इसलिए हमारे जॉब में, परिवार में जब परेशानी आती तो समझना क्या चाहिए कि बाकी लोग सुगंधित हो रहे हैं। जब परेशानियां आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि मदन गोपाल जी खलबत्ते में डालकर रौंद रहे मसल रहे हैं। जैसे यदि भगवान रुक्मिणी को नहीं छोड़ सकते तो हम कौन है? तो इसलिए कन्वीनियंस वर्सेस चैलेंज रुक्मिणी के उदाहरण में हम देखते हैं, शिशुपाल और भगवान कृष्ण। ध्रुव महाराज का उदाहरण, कन्वीनियंस और चैलेंज। अब ध्रुव महाराज की कथा में हम सब सुने हैं, हुआ क्या था? केवल गोद से उतार दिया। कितनी बार हमारे साथ होता है, ट्रेन में जाओ सीट नहीं मिलती, कोई और लेता है सीट। तुम्हारा रिजर्वेशन है फिर भी कोई और बैठा हुआ है, वो कहता है तो क्या हुआ, इधर बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊंगा, ट्रेन थोड़ी खरीद ली तुमने। तो कितनी बार हमसे भी सीट कोई छीन लेता है ना, उसको कोई, हम इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि हम बस दुनिया छोड़कर 6 महीना ऐसी कठोर तपस्या के लिए, क्यों सीट ले ली मेरी। तो ध्रुव महाराज के साथ क्या हुआ? गोद से उतार दिया, बस इतना ही हुआ था। लेकिन उनके सामने अब ये दो थे विकल्प, कन्वीनियंस और चैलेंज। कन्वीनियंट क्या था? भूल जाओ। नारद मुनि जाकर बोल दिए ध्रुव महाराज को, अरे बच्चों के साथ तो ऐसा होता रहता है, तुम तो 5 वर्षीय बालक हो। अरे वो सुरुचि ने ऐसा बोल दिया तो ठीक है ना, एक कान से सुनो निकाल दो दूसरे कान से, जाओ 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 घर जाओ, मम्मा वेट कर रही, जाओ बेटा जाओ। ध्रुव महाराज नारद मुनि से कहते हैं, आप अगर मेरे मिशन में सहायक होने के लिए आए हैं तो कुछ बोलिए, नहीं तो आप जाइए घर। नारद मुनि सोचे ये तो बहुत डिटरमाइंड है, इसलिए उसका नाम ध्रुव है। क्या पाया? पूरा ध्रुव लोक, और एक ऐसा लोक प्रलय के समय भी जिसका नाश नहीं होता। और ध्रुव लोक तो कुछ नहीं था, साक्षात भगवान का दर्शन, और वो भी कुछ नहीं था, भगवान ने अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति ध्रुव महाराज को दे दी। यदि ध्रुव महाराज आराम का जीवन चुनते तो क्या वो श्रीमद् भागवत में आते? क्या वो एक महाजन बनते? क्या उनको ध्रुवलोक प्राप्त होता? क्या भगवान स्वयं इतने प्रसन्न होते कि वो नीचे व्यक्तिगत रूप से आकर अपनी कृपा देते? इसलिए देवामृत महाराज कहते हैं कि जब भी हमारे साधना भक्ति में कोई ऐसा विचार आ जाए जो हमें हमारे जीवन में हलचल मचाए, तो समझना चाहिए कृष्ण ने भेजा है वो विचार। क्यों? ताकि हम कृष्ण को चुने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्यों मल्टीपल ऑल्टरनेट्स दिए जाते हैं? उसमें ये आपको दिखाने के लिए कि आप किसको चूज करते हो। हमारे पहली दफा जब भक्ति शास्त्री एग्जाम हुआ राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो तो उसमें वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे आए थे. तो एक डिवोटी, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी लेकिन एग्जाम में बैठने की हिम्मत थी, तो कोई पढ़ाई नहीं की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया, तो हर एक क्वेश्चन कुछ पता नहीं कि क्या आंसर उसका है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे थे ठीक से, बस उसको टिक मार्क करना है. तो पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, जहां पर पहली नजर पड़ी उसको टिक मार. पास भी हो गए. तो देवामृत महाराज कहते हैं, एनी डिस्टर्बिंग थॉट कमिंग ड्यूरिंग अवर चैंटिंग और ड्यूरिंग अवर हियरिंग, नो दैट सेंट बाय कृष्णा टू टेस्ट अस, हुम विल वी चूज. और इसके उदाहरण है अर्जुन. नेक्स्ट उदाहरण है अर्जुन, कन्वीनियंस वर्सेस चैलेंज के नेक्स्ट उदाहरण अर्जुन है. फेमस स्टोरी हम जानते हैं, अर्जुन के सामने, दुर्योधन के सामने भगवान ने विकल्प रखा, नारायणी सेना नॉन फाइटिंग कृष्णा, बता दिया कि मैं एक शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध करना तो छोड़ दो, लात घूंसा भी नहीं मारूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं, मैं खाली हाँ रथ तुम्हारा हाँक लूंगा बस उतना, बाकी कुछ नहीं. और दुर्योधन वो सोच रहा था कि वो बहुत समझदार निकला. दुर्योधन ये सोच रहा था कि मैं कितना समझदार हूं, मैंने नारायणी सेना चुनी, ये अर्जुन कितना बड़ा मूर्ख है. दुनिया भी ऐसे ही देखती है, जब हम कृष्ण को चुनते हैं तो दुनिया कहती कितना बड़ा मूर्ख निकला तू, तूने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, हाँ तूने 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 टीवी देखना छोड़ दिया, तूने चाय कॉफी छोड़ दी, कांदा लहसुन छोड़ दिया, अरे कितना बड़ा मूर्ख निकला, हम देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं. ये कैसे दुर्योधन नारायणी सेना लेने के समान है. और कई बार यदि हम अर्जुन के तरह दृढ़ व्रत नहीं है तो हमको भी लगता है अरे ये भगवान को मैंने चुना. कई बार हम डाउट में बैठे रहते हैं रथ के ऊपर हमारे. कि मैंने सही चॉइस किया कि नहीं. एक तो पहले से हमारी सेना कम है, ऊपर से वो दुर्योधन ने नारायणी सेना इतनी बड़ी सेना और ऐड कर ली वहां पर, और उसके बदले में ये कृष्ण जिन्होंने कह दिया है कि वो निहत्ते रहने वाले हैं, कभी कुछ नहीं उठाने वाले, और इतना ही नहीं वो बोल रहे हैं वो लेक्चर भी देंगे, भाषण भी देंगे, करेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे खाली. तो कई बार हम डाउट करते हैं. किस पर डाउट करते हैं? पार्थ सारथी पर डाउट करते हैं कि क्या वो हमारे कुछ काम के हैं, क्या कुछ हमारे काम आएंगे. इसलिए बाहर वाले लोग, दुर्योधन के क्लब वाले, वो लोग हर समय हमारे सामने ये चुनौतियां रखते हैं कि अरे तुमने कृष्ण को चुना, वो क्या करेंगे तुम्हारे जीवन में, जो थोड़ा बहुत है वो भी लूट के ले जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आनंद था वो भी ये लोग बोलते हैं कि वो भी बंद करो, और क्या तुम्हारी प्रगति हो रही है. सरमंडवा दिया, धोती कुर्ते पे ला दिया तुमको, इसको प्रगति कहते हैं. तो हम, हमारे अंदर भी डाउट आता. हाँ फिर उनको जब देखते हैं सूट बूट में घूम रहे हैं, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं नारायणी सेना के साथ, तो इसलिए देवामृत महाराज कहते हैं कृष्णा विल पर्सनली सेंड अ डिस्टर्बिंग एल्योरिंग थॉट टू चेक हुम विल वी चूज, कृष्णा और नारायणी सेना. नेक्स्ट उदाहरण प्रहलाद महाराज. हाउ कैन वी नॉट हैव हिज एग्जाम्पल. कन्वीनियंस वर्सेस चैलेंज. तो प्रहलाद महाराज के लिए अभी देखो, कई बार हम हमारे कन्वीनियंस की जो मेंटालिटी यूज करते हैं, तो प्रहलाद महाराज के लिए कितना कन्वीनियंट था. हिरण्यकश्यपु ने एक सवाल पूछा था, बेटा बता दे कि क्या सीखा तूने स्कूल में, क्या सीखा. प्रहलाद महाराज इतना बवाल खड़ा कर दिए वृंदावन के बारे में बोलकर, कृष्ण भक्ति के बारे में बोलकर. थोड़ा सा झूठ बोल देते हा? कि आप ही हैं सबसे बड़े, मैंने ये सीखा है कि आपकी भक्ति करूं. तो अगर प्रहलाद महाराज उस समय कन्वीनियंस के लिए झूठ बोल देते तो कितना सुकून का जीवन होता ना उनका. बट ही स्टूड बाय द प्रिंसिपल्स कि नहीं, यदि मैं पूरी सृष्टि के सबसे बड़े आतंकवादी की गोद पर भी बैठा हूं, फिर भी मेरे उसूलों को नहीं छोड़ूंगा. मैं उसका बेटा होऊंगा, उसके राज्य में रह रहा होऊंगा, शंड अमर के स्कूल में जा रहा होऊंगा, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए कि मैंने अपना हृदय किसको दिया है, मैंने अपना सर्वस्व किसको दिया है, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज, उसमें समझौता नहीं. इसलिए प्रहलाद महाराज, अब देखो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु के सामने जो अपने उसूलों से डगमगाए नहीं, तो उनको कीमत क्या चुकानी पड़ी, मृत्यु दंड. अब मान लो कि कोई हमारे सामने आकर, अभी तो हमको प्रहलाद की स्टोरी मालूम है एंड तक कि भगवान ने कैसे प्रहलाद को बचा लिया. अब हमारे साथ अगर ऐसी बीते और आगे के सातवें कैंटो के बाद कोई कैंटो नहीं लिखा है हमारे लिए, या वो वहां तक कोई आके बंदूक की नोक पर पूछे, बोलो क्या है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, और भरी हुई बंदूक है वो, उस समय क्या हम भगवान को चुनेंगे या हम कहेंगे भाई तू जो बोले बंदूक हटा ले पहले, और भगवान से अंदर प्रार्थना, भगवान बाद में मैं आपका ही नाम लेने वाला हूं, पहले बंदूक हटवा लो यहां से. तो मृत्यु दंड और ऐसे ऐसे तरीकों से प्रहलाद को मारने का प्रयास, परंतु सब में प्रहलाद डगमगाए नहीं. ही डिडंट चूज कन्वीनियंस, प्रहलाद चोज कृष्णा. श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद के सामने यदि हम देखें कन्वीनियंस और चैलेंज, व्हाट वाज कन्वीनियंट फॉर श्रील प्रभुपाद, टू स्टे इन वृंदावन और टू ट्रैवल टू अमेरिका. स्टे इन वृंदावन और ट्रैवल टू अमेरिका. और प्रहलाद श्रील प्रभुपाद की उम्र क्या थी, 70 वर्ष के श्रील प्रभुपाद. वृंदावन में रहते सब लोग उस समय, जो बाबा जी सन्यासी उस उम्र में वृंदावन में जाकर अपना भजन करते शांति से. कहां थे प्रभुपाद, राधा दामोदर मंदिर में कमरा मिल चुका था उनको, सेटल्ड थे, कोई उनको कमाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर रहकर अपना भजन कर भगवत धाम वहां से जा सकते थे, भगवत धाम में ही थे वो. तो नहीं, उन्होंने राधा दामोदर मंदिर छोड़ा, वृंदावन को छोड़ा, बंबई गए. बंबई में मालवाहक एक जहाज, उसके अंदर कितने महीनों ट्रैवल कर कहां पहुंचे, अमेरिका. और वो भी कोई वहां पर नहीं ठिकाना कि क्या करने वाले हैं, कोई प्रोग्राम्स अरेंज नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, कुछ मालूम नहीं, केवल कुछ कॉपियां श्रीमद् भागवत की और विश्वास अटूट अपने गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु पर। इमेजिन, प्रभुपाद के लिए कितना आसान था केवल वृंदावन में अपना भजन कर भगवत धाम चले जाना। कितना जोखिम उन्होंने लिया, कैसे कैसे लोगों को जाकर क्या प्रचार करना, ऐसे हिप्पी, ऐसे ऐसे नशेड़ी, शराबी, कबाबी, ऐसे लोगों को प्रचार करना, उनको कृष्ण के बारे में बताना, ऐसे जगहों पर रहना, ये सब प्रभुपाद ने चुनौती के रूप में लिया। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अनुभव सबसे ज्यादा तब किया। इसलिए राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कहे, श्रील प्रभुपाद लेफ्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिवोशन विच वॉज सेवा कुंज एंड ही वेंट टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन न्यूयॉर्क, नॉट फॉर कन्वीनियंस बट फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड गौरांग। कोई जरूरत नहीं थी बट फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड गौरांग। सो चैलेंजेस विल बी ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल चैलेंज और इंटरनल चैलेंज। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंज क्या है, इसकी चर्चा हम हमारे अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा मुद्दा है कि हमारे जीवन में, साधना भक्ति में जो 64 अंग हैं, उसमें रूप गोस्वामी ने बाहरी रूप से हमें क्या करना है, आंतरिक रूप से क्या करना है, दोनों बताया। और दोनों करते समय चैलेंजेस आते हैं। बाहर से भक्ति जो हम हमारी इंद्रियों को इस्तेमाल कर करते हैं, और जो आंतरिक, दोनों भगवान दोनों के सामने चुनौतियां रखते हैं। तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस वो हमारे क्या होंगे और उनके ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करें, आज विद्या एकादशी के दिन हम ये कहेंगे कि उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सेटिंग में। तो आज टेक होम मैसेज क्या है, टेक होम मैसेज यही है, जितने हमने उदाहरण लिए, रुक्मिणी, अर्जुन, ब्रजवासी, शिल प्रभुपाद, ध्रुव, प्रहलाद, इन सब का उदाहरण है क्या, इन सब का उदाहरण यही है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुना, चैलेंजेस को चुना कन्वीनियंस के अगेंस्ट। और ये है हमारे महाजन, इफ वी ऑल्सो वॉन्ट श्री श्री राधा मदन गोपाल इन हिज सेल्फ सेम प्योर फॉर्म, देन डेफिनेटली वी हैव टू बी रेडी फॉर चैलेंजेस, नॉट अ कन्वीनियंट डिवोशनल सर्विस। आरामदायक भक्ति कुछ होती नहीं है, इट्स एन इल्यूजन। देयर इज नथिंग लाइक इजी डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद सेड, आई ऑलवेज सेड डिवोशनल सर्विस इज सिंपल नॉट इजी। तो भगवान को चुनना, इसलिए हम बुधवार के कार्यक्रम में कह रहे थे ना, कौन कहता है कि इस संसार में कुछ अच्छा नहीं होता, यूं कहो कि जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता। और इसलिए हम भक्ति में, हमारे श्रवण कीर्तन जो भी दीक्षा लेने के पश्चात या भगवान के सामने समर्पित होकर क्या कह रहे हैं कि भगवान मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, जैसे अर्जुन ने दी, अब आप इस रथ को हांकिए और आप जिस दिशा में ले जाएंगे वही दिशा मेरे लिए सही है। और यही मर्म है लौल्यम के शुरुआत का, कि गोवर्धन पूजा चुना ब्रजवासियों ने, भगवान ने कहा इंद्र यज्ञ के अगेंस्ट गोवर्धन की पूजा करनी है। नंद महाराज ब्रजवासियों ने कहा कि यस, जो भगवान कहेंगे वो हम चुनेंगे, क्योंकि हमने भगवान को चुना है। और उन्होंने उस चुनौती का सामना किया भगवान के साथ, 7 दिन 7 रात। ये है गोवर्धन लीला। बोलो गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका?
हरि बोल प्रभु। आई हैव वन क्वेश्चन। Like you talked on the convenience and challenges, is it a really eye-opening lecture? Thank you very much. But basic principle of life, like we are driven with the principle of pleasure and pain. So everyone wants to go to the pleasure and wants to avoid the pain. That is the reason maybe many of us are choosing the pleasure, which is, you know, comfort zone or convenience, what we can say. My question is like, you know, if I visit some chemical factory, दूर से उसका ऑर्डर आता है कि वी कैन नो इट इज अ केमिकल फैक्ट्री। इफ देर इज सम फ्लावरिस्ट और परफ्यूम फैक्ट्री, वी नो यू नो देर इज अ परफ्यूम इनसाइड, सो खुशबू आती है। अगर भगवान कृष्ण आनंद का भंडार है, ही इज यू नो प्लेजर पोटेंसी और प्लेजर ऑफ दैट, देन वाई यू नो राह में इतना पेन क्यों है उनको चूज करने के पश्चात?
देखो, भगवान आनंद के भंडार हैं, परंतु हम भगवान के उस आनंद को चख नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये नहीं कि भगवान कोई सेडिस्ट है कि भगवान हमको तकलीफ देना चाहते हैं, नहीं। भगवान हम लोग जो, जैसे मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा था ना, एक है सुख और एक है आनंद। हम लोग सुख के पीछे भागते हैं इस संसार के, और वो सुख किसके प्रकार है? गुदगुली। मैं उदाहरण दे रहा था बुधवार को, गुदगुदी करना। तो गुदगुदी कर करके हम लोग एक दूसरे को गुदगुदी कर करके कह रहे हैं सुखी है ना, वो कह रहा है थोड़ा और कर। तो मान लो दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर एक दूसरे को गुदगुदी कर रहे हैं और हंस रहे हैं, उसको क्या आप कहोगे कि वो आनंद में है? या अगर कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, अकेला बैठा है, डिप्रेशन, मायूस एकदम, खुश होने के लिए क्या करूं मैं? गुदगुली शुरू करता है, क्या कहोगे उसको? खुदकुशी। तो हम लोग इस संसार के जो एकदम तुच्छ सुख हैं उसको आनंद मानते हैं। तो भगवान, तकलीफें कब होती है? जब उसको भगवान छीनते हैं। जैसे मैं एक बार उदाहरण दे रहा था कि भगवान हमको रबड़ी देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिल्क पाउडर में ही संतुष्ट होना चाहते हैं। कहाँ है एक मिल्क पाउडर और कहाँ रबड़ी? तो भगवान हमको रबड़ी देने के लिए मिल्क पाउडर छीनते हैं। तो जब मिल्क पाउडर छीना जाता है, ये जो प्रश्न आपका है, मिल्क पाउडर छीना गया और रबड़ी मिलने के बीच का जो पीरियड है ना, उसमें हम ये प्रश्न पूछते हैं कि मिल्क पाउडर तो गया, रबड़ी कहाँ है? रबड़ी अब हमें ये नहीं पता कि भगवान हमारे लिए स्पेशल रबड़ी बना रहे हैं, कपूर वाली। और रबड़ी बनाने में धीमी आंच पर बनाओ तो ज्यादा अच्छी रबड़ी बनती है, और धीमी आंच में रबड़ी ज्यादा अच्छी बनती है, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? तेज करो, हाँ भगवान वो आंच को तेज करो, जल्दी जल्दी बनाओ रबड़ी, डाल दो मिल्क में, डाल दो थोड़ा। होता क्या है, फिर हमारी रबड़ी जल जाती है नीचे से, फिर हम लोग भक्ति वैसे ही जली हुई रबड़ी खाते हैं, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, कभी जली हुई रबड़ी खाई है? वो मीठा भी लग रहा है, वो जलने की बदबू भी आ रही है। प्रभुपा तो उदाहरण दिए कि उसके अंदर हम रेती भी डाल देते हैं, सैंड एंड स्वीट राइस। तो इसलिए भगवान हमारे जीवन से जब हमारा आराम छीन लेते हैं तो हमें आत्यंतिक आराम देने के लिए, ताकि हम उसको वैल्यू करें, अदरवाइज ही कैन टेक अस बैक होम बैक टू गॉड इट राइट नाउ विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम अक्सर कहते हैं ना, लेकिन हम लोग परेशान हो जाएंगे आध्यात्मिक संसार में, क्योंकि हम उस स्तर पर आए नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड रबड़ी खा सके। इसलिए भगवान हमको तैयार कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड रबड़ी के लिए भगवान हमको तैयार करते हैं, इट्स फॉर अवर बेनिफिट।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक्चुअली अभी आपने शुरू में बताया लौलियम के संदर्भ में, तो उसमें चैतन्य चरितमृत में जो रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में संवाद की जो बिगनिंग है, उसमें आपने बताया कि अनेक जन्मों की पुण्य जो हैं, जो सुकृतियां हैं, उससे भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, तो उसके लिए मतलब लौलियम ही चाहिए। मतलब तो वो एक्चुअली हम अक्सर सुना करते हैं कि मतलब सुकृति से ही किसी की भक्ति की बिगिनिंग भी होती है, किसी की जो भक्ति की शुरुआत है वो सुकृति से ही होती है, तो इसको जरा कैसे रिलेट करें इसको जरा।
देखो, मूल्य की बात की गई है उसमें, कि जैसे मान लो आपको कुछ खरीदना है, आप बिग बाजार में गए हो, कुछ खरीदना है आपको, तो पैसे आपके पास नहीं है लेकिन आप कुछ खरीदना चाहते हो। मान लो आप कोई शर्ट खरीदना चाहते हो, आपने वो शर्ट चुना, 500 रुपए का, 1000 रुपए का एक शर्ट चुना, आपके पास वो रकम नहीं है, लेकिन आप उसको कहो कि भाई मैं एक महीने तक काम किया हूं मेरे ऑफिस में, अटेंडेंस देखो मेरा, फोन करो बॉस को पूछो, वो बोलेगा तुमने एक महीना काम किया, पैसे खिलाओ यहां पे। अरे लेकिन मैंने एक महीना काम किया तो मैं एलिजिबल हूं ना, वो लोग क्या मांगेंगे, पैसे। तो जो एक महीना काम किया वो सब पुण्य काम, ये वो सुकृति, उसका रिजल्ट क्या है, तनख्वाह, और उस तनख्वाह से शर्ट खरीद पाओगे। तो वही श्लोक में, रामानंद संवाद के श्लोक में क्या कहा गया है, हम जितने भी तीर्थयाटन कर लें, अध्ययन कर लें, ये सब कर लें, वो सब क्या है, महीना भर काम करने के समान है। आपने महीना भर काम किया लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, कोई फायदा नहीं उसका। तो वो जो फाइनल उसका आउटपुट है, हम लोग सब भक्ति में आए हैं, कुछ ना कुछ सुकृति हमने की है उसकी वजह से आए हैं, लेकिन यहां आने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि भगवान मैंने पिछले 5 जन्म पहले मैंने बद्रीनाथ की यात्रा की थी या मैंने जो भी किया था, उसके बदले में आप आ जाओ मेरे जीवन में, नहीं। अभी लौल्यम है क्या, तो वो सब जो भी हमारी सुकृतियां हैं उसका समन्वय, जैसे कि आपके महीने भर काम करने का जो निचोड़ है वो आपकी तनख्वाह है, वैसे ही सारी सुकृतियों का निचोड़ है लौल्यम, और वो जरूरी है भगवान को खरीदने के लिए। ये बताया गया कि खाली उसके बलबूते पर आप खाली उसे ये कहते रहो, अरे भाई मैंने 8 घंटे काम किया है पूरे महीना, चाहे कितना भी उसको प्रूव कर दो, वो कहेगा कि पैसा दिखाओ, पैसा दिखाओ। तो वैसे ही चाहे हम कितना भी पुण्य भगवान को दिखा दें, भगवान कहेंगे अभी लौल्यम है क्या, अभी की रकम बताओ मुझे। समझ में आ रहा, जय श्रील प्रभुपाद की। वी कैन डिस्कस फर्स्ट ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदी
शिक्षा शिक्षाश्रम प्रभु की। हरे कृष्णा, भक्तों के लिए एक बहुत